गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाल्यय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। श्री धाम वृंदावन में श्री कृष्ण बलराम मंदिर में प्रातः भागवत के सत्संग में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण के छठे स्कंध जिसमें विषय है पोषण। पोषण का मतलब है भगवान अपने भक्तों का पालन पोषण करते हैं। जैसे बगीचा लगाता है माली तो उसमें पानी भी देता है, खाद भी देता है, कटाई भी करता है, छांटी भी करता है, तो वर्धन भी करता है। ऐसे भगवान भी इस विश्व रूपी बगीचे में अपने भक्तों का संवर्धन करते हैं, इसको पोषण कहते हैं। तो 19 अध्यायों के इस छठे स्कंद में पहले 3 अध्यायों में नाम के द्वारा पोषण में आपने अजामिल की कथा सुनी। भगवान का नाम जपने से पापी अजामिल का कैसे उद्धार हुआ, एक और उसको अवसर मिला। इसके बाद अब प्रसंग चल रहा है 5वें अध्याय का, आज जहां हमको 40वां श्लोक पढ़ना है। ये दक्ष के ऊपर और नारद के ऊपर भगवान ने कैसे अनुग्रह करके पोषण किया। तो दक्ष का तो आपको कथा पहले 4थे स्कंद में मालूम है। दक्ष प्रजापतियों का अध्यक्ष बना दिया गया, परम वैष्णव शंकर का अपराध किया और वीरभद्र के द्वारा गर्दन कटा गया, शंकर जी ने बकरे का गर्दन लगा दिया और क्षमा याचना मांग ली। ब्राह्मण था दक्ष अब, लेकिन शंकर जी के अपराध करने से उसको लज्जा आई बकरे के शर से, तो वो अघमर्षण का मतलब पाप धोने वाले जगह पे ऊपर जाके बड़ी तपस्या की। तो भगवान विष्णु प्रकट होके उसको आशीर्वाद दिया और फिर दोबारा वो 10 प्रचेताओं के पुत्र के रूप में प्रकट हुआ। अब क्षत्रिय हो गया दक्ष, तो ब्राह्मण से नीचे आ गया अपराध के कारण। अब दक्ष क्षत्रिय है, 10 प्रचेता जो प्राचीन बरहित के पुत्र हैं, मृषा जो वनस्पतियों की कन्या चंद्रमा ने उसको दी थी, उससे दक्ष प्रजापति पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ। ये दक्ष प्रजापति इतना शक्तिशाली था कि अपने मन से सृष्टि करने लगा, लेकिन वो सृष्टि ज्यादा टिके नहीं, तो फिर उसने पुत्र उत्पन्न किए हरियाशव 10,000। उनको कहा पहले बेटा तपस्या करने जाओ, और तपस्या करने गए नारायण सरोवर। ये नारायण सरोवर कच्छ में है, समुद्र के किनारे पे, अभी भरा हुआ है। कोई 15 दिन, 15 नहीं, एक सप्ताह पहले हम वहाँ स्नान करके दर्शन करके आए। तो ये नारायण सरोवर, चार सरोवर भारत में मुख्य हैं प्रसिद्ध, जैसे चार धाम है ऐसे चार सरोवर। एक तो कैलाश में मान सरोवर है, एक पंपा सरोवर है जहाँ शबरी राम जी से मिली थी, एक बिंदु सरोवर गुजरात में है जहाँ कपिल देव का प्रकट्य हुआ, चौथा ये नारायण सरोवर है जहाँ नारद जी ने 1000 बच्चों को ऐसा ज्ञान का उपदेश दिया, भक्ति का ऐसा उनके अंदर भाव भर दिया कि वो वहीं से वापस घर आए ही नहीं। दक्ष ने दोबारा 1000 पुत्र उत्पन्न किए, शबलाशव, एक शबलाशव एक हरियाशव, इनको भी नारद ने वैसा ही उपदेश दिया। वो उपदेश बहुत अच्छे हैं, 10-15 ऐसी अद्भुत बातें हैं। नारद ने सीधा उपदेश नहीं दिया, कुछ एक कथा बता दी कि ये संसार है, उसमें एक ऐसा सोराख है जिसके अंदर गिरने वाला वापस नहीं आता, एक नदी है दोनों तरफ से बहती है, मृत्यु है, जन्म है, इसका मतलब है संसार का एक ऐसा, उसको कहा जाए कि एक कैसी कथा बताई। उन्होंने अपने आप चिंतन किया और कहा कि नहीं, संसार में हमको नहीं फंसना है। तो दक्ष को क्रोध आ गया कि नारद ने मेरे पुत्रों को साधु बना दिया। तो नारद का, नारद है निवृत्ति मार्ग का, निवृत्ति मार्ग मतलब केवल भगवान की भक्ति करनी है, आत्म साक्षात्कार और भगवान की सेवा में लगना है और संसार में नहीं फंसना है। तो नारद के निवृत्ति मार्ग का पोषण भगवान कैसे करते हैं और दक्ष है प्रवृत्ति मार्ग का, उसको तो प्रजा बढ़ानी है, उसके ऊपर कैसे कृपा करते हैं, दोनों के ऊपर भगवान की कृपा है। तो आज के श्लोक में दक्ष प्रजापति क्रोधित होकर नारद को कुछ कह रहे हैं और आगे चल के शराब भी दे देंगे कि तुम्हारे को कहीं 3 दिन टिकने का भी ठिकाना नहीं मिलेगा। नारद बड़ा खुश होकर नाचने लगा, अच्छा हुआ ना आश्रम बनाना पड़ेगा, न किसी को पालना न पोषना, घूमते रहेंगे भगवान का भजन करते रहेंगे। तो नारद तो इसमें खुश हो गया, तो नारद ने वापस शराब भी नहीं दिया। तो आज क्या कह रहे हैं दक्ष नारद को, उसमें कितना सत्य है और प्रभुपाद जी का तात्पर्य में दोनों पक्ष हैं। तो इसलिए आइए श्लोक का पाठ करते हैं, आप सब 40वें श्लोक का पाठ करें। नैत्थं पुंसां वैराग स्यात् त्वया केवलिना मृषा मन्यसे यदि उपशममं सिन्ह पाशः निक्रन्तमन्नम्। तो दक्ष जी कह रहे हैं नारद को, न इत्थम, इस प्रकार से नहीं होता है, न इत्थम ऐसे नहीं, क्या वैराग स्याद, ऐसे वैराग नहीं होता, ऐसे वैराग नहीं होता। कैसे वैराग नहीं होता, तो वह केवल ही ना मिर्षा, जो तुम झूठे ज्ञान की बात कर रहे हो, केवल ही ना का मतलब होता है ज्ञान और मिर्षा का मतलब होता है झूठ, तो झूठा तुम जो ज्ञान की बात कर रहे हो इससे वैराग नहीं होता। तुम्हारा जो ये तुम ज्ञान की बातें लोगों को बता रहे हैं इससे वैराग नहीं होता। बोला क्यों, बोला यदि अगर आप मानते हो, मन से यदि उपशमम, अगर आप मानते हो, उपशमम का मतलब, उप का मतलब ऊपर उठना, संसार के भोगों से ऊपर उठना, त्याग करना, उपशमम का मतलब संसार के भोगों से ऊपर उठना, त्याग करना, अगर आप ऐसे त्याग करने को आप ऐसे ही मानते हैं कि त्याग हो जाता है, किस चीज से त्याग करना है, तो कहते हैं स्नेह पाश, संसार में स्नेह का पास है। स्नेह का पास का मतलब पुत्र का, पत्नी का, पिता का, एक धन का, एक स्नेह का पास है, जीवों का स्नेह का है, और जो जीव नहीं है, जगह है, गाड़ी है, उसमें मोह है, तो स्नेह होता है जीवों से, क्योंकि स्नेह परस्पर होता है और मोह होता है एक तरफ, हमारा एक तरफा मोह होता है, धन हमारा है, धन तुम्हारा है, लेकिन धन को कोई ले जाता है, चोर तो आपको उठाता है क्या कभी के, कोई चोर ले जा रहा है, तो वो एक तरफा है, उसको मोह कहते हैं, और स्नेह दोनों तरफा का होता है। और निकर्तनम का मतलब क्या है, काटना, कीर्तनम, काटना, स्नेह पास को काटना, तुम ऐसे समझते, तुम्हारे झूठे ज्ञान से हो जाएगा और लोग वैरागी हो जाएंगे, तुम ऐसे समझते हो। इसका मतलब नारद के ज्ञान के ऊपर आक्षेप कर रहा है। लेकिन करना चाहिए क्या? अगर नारद का ज्ञान झूठा होता तो इसके बेटे घर आ जाते ना, तो उसने पास कट कैसे गया? तो ये झूठ सच नहीं है, लेकिन पिता है उसका अपना स्नेह पास इतना है कि नारद जैसा भक्त सामने खड़ा है फिर भी उसके हृदय के अंदर कोई वैराग नहीं आ रहा। कभी कभी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को जब यशोदा बांध रही थी तो भगवान रो क्यों रहे थे? तो कहते हैं भगवान कहते हैं मेरे दर्शन के बाद लोगों को शांति मिलती है, मेरी माँ मेरे सामने खड़ी इतना गुस्सा कर रही है, मेरे को दुख होता है कि क्या मेरी शक्ति समाप्त हो गई क्या? मैं जिसको दर्शन दूं उसको तो शांत होना चाहिए ना, और मैं इसके सामने खड़ा हूं और ये इतना क्रोध कर रही है, मेरे को हो क्या? तो नारद को भी आश्चर्य लगता है कि मैं भक्तों को भगवान की भक्ति सिखाता हूं। नारद शब्द का अर्थ क्या है? द देने वाला, नार जो नारायण है, जो भगवान है, वो किसी को भक्ति में के करके दे दे उसको नारद कहते हैं। और फिर पंजाबी में नारद का मतलब है जिसकी एप्लीकेशन कभी रद्द ना हो, जो काम करे वो पूरा हो जाए तो उसको नारद कहते हैं, जो काम करना है वो पूरा हो जाएगा, वो कभी रद्द होता ही नहीं है। नारद कहता है ये तो नारद का भी अपमान कर रहा है दक्ष असल में। तो अब श्रील प्रभुपाद जी अनुवाद क्या लिखते हैं देख लीजिए। प्रजापति दक्ष ने आगे कहा, इसका मतलब पहले भी कुछ कह के आ रहे हैं, यदि तुम सोचते हो कि वैराग्य की भावना जागृत कर देने से ही मनुष्य भौतिक जगत के से वृत्त हो जाएगा, तो मैं कहूंगा कि पूर्व ज्ञान के जागृत हुए बिना तुम्हारी तरह केवल वेश बदलने से संभवतया वैराग नहीं उत्पन्न किया जा सकता। मुश्किल पढ़ने में मुश्किल लग रहा है, नहीं श्लोक में सीधा सवला आसानी समझ में आ रहा है, पढ़ने में थोड़ा। अब दोबारा सुनिए, प्रजापति दक्ष ने आगे कहा, क्या कहा? यदि तुम ये सोचते हो कि वैराग्य की भावना जागृत कर देने से ही मनुष्य भौतिक जगत से वृत्त हो जाएगा, वैराग्य भावना यानी वैराग्य जागृत नहीं हुआ है, वे भावना जागृत हुई है केवल। ये ऐसे दक्ष कह रहा है जैसे शमशान का वैराग्य, आदमी जाता है कोई मर जाता है तो कहता है क्या रखा है दुनिया में, थोड़ी देर के लिए वैराग्य आता है, लेकिन जैसे घर आता है तो वो वैराग्य समाप्त हो जाता है। तो ऐसे जो थोड़ी क्षणिक वैराग्य जो होता है उतने ही भावना जागने से आप समझते हो कि लोग भौतिक भोग से विरक्त हो जाएंगे, मैं नहीं मानता। तो मैं कहूंगा, मेरा मानना है, दक्ष कहता है पूर्ण ज्ञान के जागृत हुए बिना, पूर्ण ज्ञान के जागृत होने का मतलब अविद्या का नाश होना, अविद्या का नाश होना। और जब तक वो नाश नहीं होता है तुम्हारी तरह केवल वेश बदलने से, अब तो सीधा आक्षेप कर रहा है तुम ये लाल कपड़े पहन के घूम रहे हो, तुम्हारे को इतना वैरागी होता तो मेरे बच्चों को जाके ये कथा बताने की क्या जरूरत है, जाके भक्ति करो भजन करो। ब्रह्मा जी फिर कहेंगे दक्ष को, अब पुत्र मत उत्पन्न करना, पुत्र उत्पन्न करोगे ये फिर प्रचार करने आ जाएगा, अगली बार तुम लड़कियां उत्पन्न करेगा, अगर नारद वहां आएगा तो बदनाम हो जाएगा कि लड़कियों से बातें करता है। तो फिर 60 पुत्रियां उत्पन्न की, नारद आया ही नहीं, तो उन 60 पुत्रियों से फिर सारा वंश चला। तो इससे एक बात लगती है कि पुत्रियां होंगी तो कभी काम होंगी, और ये पुत्र होंगे तो भाग जाएंगे, कोई नारद के चक्कर में आ गया तो चला जाएगा, तो पुत्रियों से फिर वंश चल गया। तो अब कहते हैं तुम्हारी तरह वैरस बदलने से संभवतः वैराग नहीं उत्पन्न किया जा सकता, ये आक्षेप है दक्ष का। क्योंकि दक्ष को बहुत मोह था अपने पुत्रों में, वो प्रजा बढ़ाना चाह रहा था, तो ये स्वाभाविक है पिता के नाते दक्ष को ऐसे कहना कि सिर्फ कपड़े बदल के घूमते रहते हो। ऐसे लोग हमको भी कभी कहते हैं इतने मोटे हो गए हो महाराज, कोई काम करते हो, जहाँ मिलता है वहाँ रसगुल्ले और रबड़ी खा के घूम रहे, लोग कहते हैं। हम उनसे पूछते हैं कभी आप ठीक कहते हो भैया, ये हमारी इतनी बड़ी सेना है, सरकार सबसे ज़्यादा उसके ऊपर खर्च कर रही है, ये सेना में आदमी भर्ती हुआ और रिटायर हो गया, एक भी लड़ाई नहीं लड़ा, क्या सरकार ने बेकार का खर्च किया? हाँ, वो भर्ती हुआ सरकार में, सेना में भर्ती हुआ, रिटायर भी हो गया, 25 साल लड़ाई हुई नहीं, तो क्या सरकार ने इतना खर्चा बेकार किया? जब सीमा के ऊपर समस्या होती है तो सीने के ऊपर गोली वो खाता है, हम तो सोते रहते हैं तो इसलिए खर्चा करते हैं ना। तब हम कहते हैं कि साधु महात्मा भी तुम्हारी संस्कृति के ऊपर आक्रमण होता है तो गली गली में जाके वो हरि गुण गा के तुम्हारी संस्कृति की सुरक्षा करता है, तुम तो घर में दुकान में और अपने पैसे के अंदर फंसे हुए हो, तुम्हारी संस्कृति की साधु रक्षा करता है और तेरी सीमा की सैनिक रक्षा करता है। ये मुफ्त का नहीं खा रहे हैं, ये तुम्हारी संस्कृति की रक्षा के सैनिक हैं। ये साधुओं का बड़े से बड़ा कार्य है। नारद जैसे साधु न होते तो कहाँ से व्यास पैदा होता, कहाँ से भागवत आती, कहाँ से वाल्मीकि आता, कहाँ से रामायण आती? तो ये महात्मा नहीं होते तो संस्कृति की सुरक्षा होती क्या? तो साधुओं की भी आवश्यकता है। साधु एक भी होगा तो हजारों का उद्धार कर देगा। तो अब श्री प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़िए। प्रजापति दक्ष का ये कहना सही था, क्या? कि मात्र वेश बदलने से कोई इस भौतिक जगत से विरक्त नहीं हो जाता। ये बात प्रभुपाद जी पहले मानते हैं कि केवल कपड़े लाल पहनने से आदमी जगत से मुक्त नहीं हो सकता है। ऐसे बहुत से महात्मा हैं, लाल कपड़े पहने घर छोड़ दिया, फिर आश्रम बना दिया, अपनी माता पिता छोड़ दिया, फिर एक दो और माता पिताएं बना के बैठ गए, फिर अस्पताल बनाना चालू कर दिया। फिर ये प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ऐसे केवल वेश बदलने से लोग, तो वेश बदलना फैशन हो गया है, और कब से ये वेश बदलने से वैरागी झूठे सिद्ध हो रहे हैं। महाराज पृथु के यज्ञ में इंद्र वेश बदल के साधु में वेश में आया, घोड़ा चोरी करके गया। रावण सीता को अपहरण करने के लिए वेश बदल के साधु का वेश धारण करके आया। तो ये जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं दक्ष की बात सच्ची है, केवल वेश बदलने से कोई आदमी वैरागी नहीं हो जाता। क्या रावण वैरागी था? लाल कपड़े पहन के आया था, सीता का अपहरण करने के लिए आया। क्या इंद्र वैराग के कारण आया था दक्ष के अपने पृथु के यज्ञ के अंदर आशीर्वाद लेने के लिए घोड़ा चुराने आया था? तो केवल ऐसे, और ये प्रभुपाद ने लिखा क्यों है? क्योंकि ऐसे बहुत से लोगों के घरों से डाका डाल के, हत्या करके, चोरी करके, पुलिस उनको ढूंढ रही है, वो लाल कपड़े पहन के हरिद्वार में और जगहों पर साधु बन के बैठे हुए हैं। ये झूठ नहीं है, ऐसा लोग करते हैं। एक रशियन भक्त था, माफिया में था, उसके पीछे पुलिस थी, वो भागता भागता अचानक मंदिर में आ गया। मंदिर में आया तो लाल कपड़े पड़े थे किसी के, वो पहन के, और वो जैसे दूसरे बैठे थे ऐसे वो बैठ गया। माला वाला तो उसके पास थी नहीं, ऐसे कपड़ा कपड़े को यू कर रहा था कुछ। तो पुलिस अंदर आई, पुलिस ने देखा तो ये तो ये क्या, यहाँ कोई आया तो नहीं बदमाश, कोई डाकू आया नहीं, बोला ये तो सब भक्त है, उन कर रहे हैं इतना रोज। उसको कुछ समझ में आया, पुलिस चली गई तो इसका दिमाग खटका, इसको वैराग आ गया कि भाई झूठ मूठ का कपड़ा पहनने से पुलिस से बच गया, सचपच का अगर साधु बना जाऊं तो जमराज से भी बच जाऊंगा ना। तो फिर वो साधु ही बन गया, उसने अपनी जीवनी बताई कि फिर मैं साधु बन गया। मैंने बोला आप काय के लिए भागना, जब यहां साधु बनने से इतना काम हो जाता है। नहीं, हम अपने मंदिर में देखते हैं बेचारे आते हैं पहले कोई, या किचन में सेवा करता है, सफाई करता है, फिर देखे भाई ये तो सब तीन तीन सब्जी खाते हैं, हमको खिचड़ी देते हैं, ऐसे क्या करने की क्या जरूरत है। आस्ते आस्ते वो माला लेता है, फिर कहता है प्रभु जी मुझे भक्त बना दो। तो उसको वैराग वैराग नहीं आता है, लेकिन उसको सुविधाएं ठीक नजर आती हैं भक्ति बनने में। तो ये प्रभुपाद ने लिखा है झूठ नहीं है, हमको अच्छी तरह से, हम आंखों से देख रहे हैं कि 10 साल के लिए लाल कपड़े पहनने के लिए भक्त तैयार हैं अगर अमेरिका की वीजा मिल जाए तो, और उधर पहुंचने के बाद फिर टी शर्ट सेटते हैं या से बेचते हैं या पेट्रोल पंप डालते रहते हैं, और ऐसे एक नहीं आपको 1000 मिल जाएंगे। तो ये जो बात है दक्ष की वो झूठी नहीं है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि केवल कपड़े बदलने से वैराग नहीं आ जाता। और फिर कलियुग में सन्यासी जो के अपने श्वेत वस्त्रों को बदलकर गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं और तब सोचते हैं कि वे चाहे जो भी करें तो वे भौतिकवादी गृहस्थियों से भी अधिक ग्रहित हैं। अब प्रभुपाद जी तो रहे हैं भारत में, यहाँ उस समय भी ऐसे लोग थे जो केवल लाल कपड़े पहन के, आप देखते होंगे बड़ी लाइन है लाल कपड़े की हरिद्वार में और चलती रहती है, करते क्या है सुबह सुबह पहले चाय के भंडारे पे जाएंगे और फिर चाय के भंडारे के बाद एक और भंडारे पे, भाई अगर दक्षिणा है तो जाएंगे नहीं तो हाथ भी नहीं लगाएंगे, और शाम तक 10-12 भंडारे खा के दक्षिणा लेके आते हैं और कोई भजन नहीं होता है। तो केवल कपड़े बदलने से प्रभुपाद जी कहते हैं वो हम जो चाहें वो कर लें ऐसे सोचना ये उचित नहीं है, ये भौतिकवादी, ये क्या ग्रस्त, इससे ग्रस्त अच्छा है। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं झूठ मूठ का वैरागी बन के और ऐसे भिक्षा से जीने से गृहस्थी बन के अच्छी तरह से अपना पालन करे वो अच्छा है। अगर वैराग नहीं है तो लाल कपड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसे महात्मा भी हैं, लाल कपड़े वाले हैं, सिद्ध हैं, शांत हैं, किसी कारण से आश्रम के काम से कोर्ट में जाना पड़ा, बोला इस वस्त्र का अपमान हो जाएगा, ये नहीं पहन के जाऊंगा, ये वस्त्र पहन के कोर्ट में जाऊंगा तो इस वस्त्र का अपमान हो जाएगा, तो उनको वस्त्र का इतना सम्मान होता है क्योंकि ये वस्त्र आग का वस्त्र है, ये आग के अंदर रहने के बराबर है, इसको आग जैसे इसका रंग आग का है, ये आग के अंदर रहना है। कौन सी आग के अंदर रहना है? भगवान के प्रेम के वैराग की आग में रहना है और संसार को भस्म करके छोड़ देना है कि ये राख के बराबर भी नहीं है हमारे लिए। इतना अगर त्याग वैराग हो तो ये वस्त्र पहनना चाहिए। इसकी संस्तुति कहीं नहीं की गई है, ऐसे ऐसे कपड़े बदलने के लिए कहीं भी नहीं कहा गया है। प्रजापति दक्ष इस दोष को इंगित करने में बिल्कुल सही थे, किंतु वे ये नहीं जानते थे कि नारद मुनि ने हरियाशव तथा सबलाशव में पूर्ण ज्ञान के माध्यम से वैराग की भावना जागृत की थी। वो कहते उनकी बात सही है लेकिन नारद ऐसा नहीं है, नारद ने उनके बच्चों को केवल कपड़े बदलने के नहीं उसके अंदर ज्ञान के द्वारा वैराग पैदा किया था, वो वापस नहीं लौट के आए। नारद का काम पच्चा पक्का था, कट नारद क्या है बजा के शिष्य को लेता है। आपको मालूम है ध्रुव महाराज जा रहा था, ध्रुव महाराज के सामने नारद आया तो नारद ने क्या कहा, अरे तुम्हारे पिता ने तुम्हारे को घर से, क्या जंगल में जाओगे, शेर है, भालू है, दुखी हो जाओगे, चलो तेरे पिता के पास ले चलता हूं, वापस गोद में बिठाने के लिए कह दूंगा। और ध्रुव महाराज ने क्या कहा, मैंने सुना है नारद आप भगवान लोगों को मिलाते हो, मुझे फिर संसार में फंसाने जा रहे हो, अगर भगवान से मिला सकते हो तो मैं आपको प्रणाम करके गुरु मानता हूं, नहीं तो अपना आप रास्ता लो, मैं अपना रास्ता लेता हूं, प्रणाम तक नहीं किया। नारद ने देखा कि ये शिष्य पक्का है, बजा के देखा कि ये शिष्य पक्का है, कच्चा नहीं है, है 5 साल का लेकिन है पक्का। तब उसको द्वादश अक्षर मंत्र देके और शिक्षा दी, और ऐसी शिक्षा दी कि 6 महीने में भगवान की का दर्शन भी हो गया और गुरु का पद भी प्राप्त हो गया। तो नारद जी भी कच्चा काम नहीं करते हैं, उनके शिष्य पक्के हैं, कोई कच्चा शिष्य नहीं है आज तक। नारद का शिष्य कोई वापस लौट, मिर्गारी भी वापस नहीं लौटा तो दूसरे क्या लौटेंगे, तो नारद का काम बहुत पक्का है। तो नारद ने हरियाशव और सबलाशव ये उनके पुत्रों का नाम था, तो उनको बिल्कुल ज्ञान देके वैराग उत्पन्न किया था, ऐसे ही प्रबुद्ध वैराग्य वांछनीय है। प्रभुपाद कहते ऐसा प्रबुद्ध ज्ञान पर वैराग्य, प्रबुद्ध ज्ञान वैराग्य का मतलब क्या? असल में वैराग के दो अर्थ हैं, एक अर्थ है वैराग का सामान्य, संसार के भोगों से अपने आप को हटा लेना जबरदस्ती, और दूसरा वैराग का अर्थ है विशेष राग, भगवान में, भगवान के नाम में, भगवान के रूप में इतना राग हो जाए, इतनी आसक्ति हो जाए, इतना भाव और प्रेम हो जाए कि संसार दिखे ही नहीं। तो ये वैराग जो है ये नारद उत्पन्न करता है। वो उनको जैसे ये गिलास यहां पानी की पड़ी है, इस गिलास को मुझे छुड़ाना है तो यहां चांदी का गिलास रख दो, तो फिर इस गिलास के अंदर मेरी कोई आसक्ति नहीं होगी। तो ऐसे नारद सी भगवान जो हीरा है वो देता है तो संसार के कांच के टुकड़े अपने आप भूल जाते हैं। तो वैराग की ये परिभाषा है विशेष राग। भक्ति के वैराग में भगवान में विशेष आसक्ति होती है, राग होता है, और जितनी भगवान में आसक्ति होगी उतनी संसार से अनासक्ति होगी, क्योंकि आसक्ति का आपके पास है ही 24 घंटे। अगर 8 घंटे भगवान की सेवा में लग गए तो संसार से 8 घंटे तो बच ही गए ना, तो कुछ अलग उसमें प्रयास नहीं करना पड़ा। ज्ञान में जबरदस्ती वैराग्य किया जाता है, उसमें भगवान में आसक्ति नहीं होती है, जबरदस्ती संसार में दुनिया की सेवाओं को छोड़नी पड़ती है। इसलिए ज्ञान के मार्ग में क्या रास्ता है? नेति नेति, ये भौतिक है छोड़ो, ये भौतिक है छोड़ो, ये भौतिक है छोड़ो, वो आध्यात्मिक कहाँ है उसका पता ही नहीं लगता। तो भागवत मार्ग में क्या है? शब्द के द्वारा, शब्द के द्वारा भौतिकता से आध्यात्मिकता की तरफ हमारी रुचि लगने हो जाती है। शब्द के द्वारा कैसे? हरे कृष्ण महामंत्र जपने से चाय अपने आप छूट जाती है, हाँ मांस मछली अंडा सब छूट जाता है। ये क्या करना, करना क्या है? कुछ हरे कृष्ण जपना है, तो भौतिक भोग अपने आप छूट जाते हैं और भगवान की तरफ आसक्ति। वैसे भागवत सुनने से भी ऐसे ही होता है, भागवत सुनो, भगवत गीता सुनो, भगवान का नाम जप करो, तो शब्द के द्वारा भागवत मार्ग में, शब्द के द्वारा भौतिकता से वैराग और कृष्ण भावना की जागृति होती है, और ज्ञान में जबरदस्ती भौतिकता को छोड़ते हैं और आध्यात्मिकता को ढूंढते हैं। तो वो जो है उससे ये भागवत मार्ग है, ये सरल है और सफलता तुरंत दिलाने वाला है। तो यहां नारद ने उनको भागवत मार्ग से दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया। तो ये वांछित नहीं है बौद्ध, ये शब्द किसकी बात कर रहे थे? प्रबुद्ध वैराग्य वांछनीय है। प्रबुद्ध वैराग्य का मतलब, प्रबुद्ध किसको कहते हैं? अच्छी तरह से जानकर, सोचकर, समझकर फिर भगवान के रास्ते पे चले। ऐसे नहीं घर में बस वो कहते हैं स्त्री मुई धन नासा, मुंड मुंडाए बनिया सन्यासा। घर में स्त्री मर गई, धन नाश हो गया, दुकान चौपट हो गया, तो बाल मटू कटवा दिए और लाल कपड़े पहन के सन्यासी हो गया, ऐसा नहीं। प्रबुद्ध, प्रबुद्ध का मतलब अच्छी तरह से शास्त्रों का, प्रबुद्ध की माना ज्ञान प्राप्त करने की माना के पीछे एक शब्द समझ लीजिए पक्की तरह से, जब तक प्रमाणिक गुरु के शरण में जाकर दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके और साधन में नहीं लगा है तब तक वैराग कच्चा है। ऐसे बहुत से वैरागी घर से झगड़ा करके निकल जाते हैं और 5-7 दिन में वापस लौट के आते हैं, इसे ऐसा कच्चा वैराग है। ये प्रबुद्ध के वैराग नहीं है, ऐसे बहुत से हैं और ऐसे हमने देखे हैं, 2 दिन घर से बाहर निकलते हैं फिर 3रे दिन वापस आ जाते हैं। तो प्रबुद्ध होने के बगैर वैराग वांछित है। मनुष्य को पूर्ण ज्ञान के साथ संन्यास आश्रम में प्रवेश करना चाहिए, ज्ञान वैराग्य, पूर्ण ज्ञान के साथ संसार। प्रभुपाद जी संन्यास देने से पहले दो बातें कहते थे ज्यादा, अगर आपको कोई अच्छे घर में प्रचार करने जाए और लगे कि इतना बड़ा महल मेरा भी होता तो संन्यास लेने की जरूरत नहीं है। कहीं कोई सुंदर नवयुवती देखे और तुम कहो कि मेरी भी ऐसी अच्छी पत्नी थी या मेरी ऐसी होनी चाहिए थी तो संन्यास लेने की जरूरत नहीं है। और फिर कहते अच्छी गाड़ी कहीं से चलती हुई देखो और पूछो इसका मॉडल कौन सा है, कितने की मिलती है, ये भी तुम्हारी इच्छा हो तो संन्यास लेने की जरूरत नहीं है। एक को प्रभुपाद ने पूछा संन्यास क्यों ले रहे हैं, बोला महाप्रसाद की प्लेट मिलती है इसलिए। तो ये प्रबुद्ध वाले नहीं थे, ऐसे थे इसलिए कुछ नहीं टिक पाए। ऐसे नहीं प्रभुपाद ने जितनों को संन्यास दिया वो टिक नहीं पाए क्योंकि प्रबुद्ध नहीं थे, लेकिन प्रभुपाद ने कहा मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास समय कम है और है यातायात की समस्या, माया के साथ लड़ाई करनी है, जो भी आए उसको मेरे को सेना में भर्ती करना है। अरे सैनिक है तो कोई तो वीर गति को प्राप्त होगा, कोई सफल होगा, कोई चल पाएगा कोई नहीं चल पाएगा, मैं तो सेवा में लगाने के लिए इनको एक अवसर दे रहा हूं। तो सन्यासी की ये इच्छाएं नहीं होनी चाहिए कि घर बड़ा ऐसा होता मेरे को, ऐसा सेवा करने वाला कोई होता, ये इच्छा ही मन में जब ना आए भगवान मेरे साथ सदा है, गुरु मेरे साथ सदा है, मैं अकेला नहीं हूं ऐसा विश्वास हो जाए तो सन्यास लेना चाहिए। क्योंकि जीवन की सिद्धि तभी संभव है जब वो इस भौतिक जगत को इस तरह से छोड़े जैसे आगे लिखा नहीं किस तरह से छोड़े। भौतिक जगत को कैसे छोड़ना चाहिए, हमारे छह गोस्वामियों के लिए क्या गाते हैं, मंडलवत्पति तुच्छवत, संसार को तुच्छ समझ के छोड़ना चाहिए। क्यों तुच्छ समझ के छोड़ना चाहिए कि मालूम है अशाश्वत है, सदा रहने वाला है नहीं, दुख का कारण है, इसमें कोई सुख है नहीं, ये जब तक अनुभव नहीं हो जाता है तब तक संसार छूटना बहुत मुश्किल है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं जब तक आदमी ऐसे संसार से मन उठ न जाए तब तक भक्ति में निष्ठा पूर्वक लगना बहुत संभव नहीं है। संसार से वृत्ति आए, कैसे आए, ये माया तो सबको दिलाने का प्रयास करती है लेकिन हम फिर माया को ही सच मान के बैठ जाते हैं, नहीं तो माया सबको दुख दे रही है, ऐसा नहीं है कोई आदमी इस दुनिया में दुखी नहीं है लेकिन फिर भी सुख कहाँ है इसका पता नहीं लगता है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं उच्च पद तक सरलता से पहुंचा जा सकता है जैसे कि श्रीमद् भागवत के कथनों 1-2-7 से समर्थित होता है। अब प्रभुपाद जी एक श्लोक उद्धृत कर रहे हैं कि ज्ञान और वैराग्य दोनों कैसे उत्पन्न होते हैं, ज्ञानियों के नहीं भक्तों के, प्रबुद्ध ज्ञान के वैराग्य कैसे होगा उसकी बात कर रहे हैं। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजतः, वासुदेव भक्ति, वासुदेव भगवान श्री कृष्ण, भगवती भक्ति योग, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के योग का आश्रय कोई लेगे, प्रयोजित है उसको कोई धारण कर ले तो फिर क्या होगा, जनस्याशु बहुत जल्दी पैदा हो जाएगा, जनस्य पैदा होना, आशु मतलब एकदम, क्या वैराग्यम ज्ञानम च, वैराग भी हो जाएगा, क्या भगवान में राग हो जाएगा संसार से, और ज्ञान कौन सा, ये कौन सा ज्ञान उसके हृदय में आएगा, आत्मा का ज्ञान, भौतिक जगत का ज्ञान नहीं, वासुदेव के संबंध का ज्ञान, वासुदेव के संबंध का ज्ञान। इस ज्ञान को प्रभुपाद जी अधूरा ज्ञान लिखते हैं कि केवल मैं आत्मा नहीं हूं मैं शरीर हूं इतना ही जान लेना ज्ञान पूरा नहीं है। पूरा ज्ञान है कि हमें भगवान श्री कृष्ण का हूं और श्री कृष्ण श्याम सुंदर त्रिभंग ललित और मोर पिच्छो धारी वेणु धारी, ये जब तक भगवान की माधुरिता भगवान की सुंदरता इसका जब तक ज्ञान नहीं हो जाता तब तक भौतिक भोग से वृत्ति होना संभव नहीं है। ये जब ज्ञान हो जाए तो वासुदेव भगवान की श्री कृष्ण की भक्ति करने से हृदय के अंदर वैराग और ज्ञान च यद अहितुकम, और ये वैराग और ज्ञान किसी कारण से नहीं है, कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं संसार में, ये केवल कृष्ण के सेवा में लगने से है। तो ये श्लोक प्रभुपाद ने उद्धृत क्यों किया, क्योंकि भक्ति का आचार्य है नारद जी, और भक्ति से ज्ञान और वैराग भक्ति के फल हैं, ये है अंतर। वो कहते हैं बगैर ज्ञान के भक्ति नहीं होगी, पहले थोड़ा सा ज्ञान चाहिए, इतना कि हरे कृष्ण मंत्र कैसे जपना है, चार नियम कैसे पालन करना है, इतना ज्ञान काफी है, फिर भक्ति करेंगे तो दिव्य ज्ञान अपने हृदय में गुरुजी देते हैं और भगवान भी परमात्मा के रूप से अंदर से प्रेरणा देते रहते हैं। ये भगवान की चतुर्श्लोकी भगवत गीता में वचन है, ये प्रश्न उठाया है बलदेव विद्याभूषण ने, अनादिकाल से अज्ञान से ग्रस्त जीव के अंदर ज्ञान कैसे उत्पन्न होगा। उसका उत्तर देते हुए कहते हैं भगवान अनुकंपा करके हृदय में बैठे हुए ज्ञान के प्रकाश से उसके अज्ञान के अंधकार को नाश कर देते हैं। ये जो 11वां श्लोक है, तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जतम नास्यामि आत्म भाविस्तो ज्ञान दीपे न भास्वता, ये इसका उत्तर है। लोग कहते हैं भक्तों को ज्ञान नहीं है, ऐसे नाचते कूदते, वहां प्रभुपाद जी का तात्पर्य है, चैतन्य महाप्रभु को भी प्रकाश आदनक आनंद सरस्वती कहने लगे वेद पढ़ते नहीं हो, उपनिषद पढ़ते नहीं हो, सन्यासी हो, हरे कृष्ण का जप के नाच रहे हो, ऐसे लोग कहते हैं कि भक्तों को ज्ञान नहीं है। लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि भक्त को ज्ञान किताबों का नहीं है, कोई बात नहीं, हृदय से भगवान उनके अज्ञान का नाश कर देते हैं, नास्यामि मैं नाश कर देता हूं। तो ये श्लोक का मतलब है हम भक्ति करेंगे तो भगवान हमारे हृदय से गुरु के रूप में, चैत्य गुरु के रूप में अज्ञान को नाश कर देंगे। और ये भगवान स्वयं कहते हैं केवल भागवत सुनने के लिए आ जाओ तो भागवत से निकल के भगवान कान के द्वारा हृदय में पहुंचकर और हृदय के सारे अज्ञान मैल को धो के साफ कर देते हैं। धुनोति समलम कृष्ण, ये कृष्ण काम करता है। ये अंतर है, ज्ञानी अपना स्वयं को साफ करता है और भक्त की सफाई अज्ञानता की भगवान करते हैं। भक्त बालक की तरह है जैसे माँ उसको साफ करती है, और ज्ञानी बड़े बेटे की तरफ है, इस तरह है जो समझता है मैं अपने आप को स्वयं संभाल लूंगा, तो उसमें के गिरने की संभावना है। लेकिन बच्चे को कभी माँ न मैला होने देती है, न गिरने देती है, न मलमूत्र में सना हुआ रहने दे सकती है। तो भक्त भगवान के लिए बालक की तरह, इसलिए भगवान उसकी सारी देखभाल करते हैं। भगवान कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य को तुरंत अहितुकी ज्ञान और संसार से वैराग प्राप्त हो जाता है। ये तो भागवत का महत्व है कि भक्ति तो भाग वृंदावन में जब आई तो नव युवती हो गई और ज्ञान और वैराग बूढ़े थे। तो नारद जी, यहां भी नारद जी है, भक्ति को वचन दिया है कि गांव गांव में, शहर शहर में, गली गली में जब तक तुम्हारा प्रचार नहीं करूं तो मैं नारायण का शिष्य नहीं हूं। और फिर हाथ से हिलाया बच्चों को, आंखें खोलें बंद कर दें, फिर वेद का ज्ञान दिया, गीता पढ़ के सुनाया, फिर उठ के बैठे सो जाएं, लेकिन जवान नहीं हुए। नारद को आश्चर्य हो गया, अरे हिलाने से गीता भागवत गीता सुनाया, भागवत ने गीता सुनाया, वेद सुनाया, इसका अर्थ क्या है। ज्ञान और वैराग न कर्म से जागृत होते हैं न ज्ञान से जागृत होते हैं, ज्ञान हिलाना कर्म है, वेद कान में सुनाना, गीता सुनाना ज्ञान है, उससे नहीं होते। तो नारद चिंतित होके बद्रिक आश्रम में, अपने गुरु के आश्रम में गया। भगवान बद्री नारायण ने कहा संतों का संग करो, संतों से मार्ग मिलेगा। और तब चार कुमार मिल गए, उन्होंने कहा भागवत का उपदेश दो, भागवत भक्ति का रस के, भक्ति के रस का सागर है, और ये ज्ञान और वैराग्य जागृत हो जाएंगे। नारद ने पूछा, मैंने वेदों का उपदेश दिया, वेदों में और भागवत में फिर अंतर क्या है? तो सनक आदि कुमार मुस्कुरा के कहे, तुम्हारे को भागवत के ज्ञान का तो पता है, आम के पेड़ के अंदर रस तो होता है, लेकिन आम को काटने से कभी आम का जूस मिलता है क्या? बोला नहीं। बोला आम का जूस चाहिए तो? बोला पका हुआ फल होगा तो मिलेगा। बोला ऐसे वेद वृक्ष है और उसका पका हुआ फल भागवत है, भागवत से रस मिलेगा, वेद से रस नहीं मिलेगा। इसलिए मैं भागवत सुनाता हूं। और जब भागवत सुनाना शुरू किया सनकादि ऋषियों ने, सप्तऋषि आश्रम हरिद्वार में गंगा के तट पे, नारद जी वहां यजमान बने, तो तुरंत ही महात्म पूरा हुआ, तो भक्ति नवयुवक्ति वहां प्रकट हो गई। सबने पूछा कौन हो? सनकादि ने कहा कौन हो माता? बोला मैं भक्ति हूं। कहां से प्रकट हुई हो? भागवत से प्रकट हुई हूं। और उस वक्त दो बच्चे उसके उठ के नाचने लगे और नृत्य कर रहे हैं। अरे ये कौन है? बोला ये मेरा बेटा ज्ञान और वैराग्य। अरे ये ज्ञान और वैराग्य जो भक्ति का होता है वो ज्ञानी नृत्य करता है। ये आप एक अंतर समझ लो, जो ज्ञानी कच्चा कोरा होगा वो नृत्य नहीं कर पाएगा, और जो भक्ति से उत्पन्न जिसके पास ज्ञान होगा वो आनंद में मगन हो गए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे नृत्य करेगा। ज्ञान नृत्य कर रहा है, ज्ञान नृत्य करता नहीं है लेकिन ज्ञान नृत्य कर रहा है। एक पुस्तक लिखा है प्रभुपाद जी के शिष्य ने, ब्लेजिंग साधु अच्युतानंद, पहले सन्यासी थे, उसमें लिखा है प्रभुपाद 70 साल में आए और उसके बाद हमारे साथ नृत्य करते थे। तो साधु जो नृत्य नहीं कर सकता है उसका ज्ञान कच्चा है, पक्का नहीं है। तो लिखा है साधु, ये नृत्य करने वाला साधु था, इसने आंखें बंद करके हमको ध्यान नहीं सिखाया लेकिन आनंद में मगन होके नृत्य करना सिखाया। और नृत्य में भी कहते थे कि मृदंग बजाओ और बड़े बड़े खोल बजाओ तो अंदर के आपके अंदर जो भक्ति का भाव है वो एकदम जागृत हो जाएगा, तो आनंद में मगन होके आप खेलते कूदते नाचते भगवान को पा सकते हो, और आंखें बंद करके इस मार्ग पे चलोगे तो भी कहीं नहीं गिरोगे। तो प्रभुपाद जी, तो ये जो ज्ञान भक्ति से उत्पन्न होता है उसमें नृत्य बड़ा अच्छी तरह से किया जा सकता है। नारद तो नृत्य करते हुए ही चलते हैं, वो तो उनका पांव दो जमीन पे होता ही नहीं है, एक ऊपर, और भगवान श्री कृष्ण हमारे ब्रज में चलते हैं तो नृत्य करते हुए चलते हैं। उनका नाम ही क्या है? नटवर। वो नटवर है, नटराज शंकर है, वो भी उसका वर्ण करने के लिए गोपी बन के आया, इसलिए उनका नाम है नटवर। तो ये नटवर दो पांव कभी कृष्ण के जमीन पे नहीं लगते, वो नृत्य करते हुए ही चलते हैं। तो भगवान के भक्त भी नृत्य करते हुए चलते हैं। यदि कोई व्यक्ति गंभीरता पूर्वक भगवान वासुदेव की भक्ति में लगता है तो उसमें ज्ञान तथा वैराग स्वतः प्रकट होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। प्रजापति दक्ष का ये दोष आरोप के नारद में ने उनके पुत्रों को ज्ञान के पद तक ऊपर नहीं उठाया था सच नहीं था। प्रजापति दक्ष के सारे पुत्रों को सर्वप्रथम ज्ञान के पद तक उठाया गया था और तब उन्होंने स्वतः ही संसार का परित्याग कर दिया। संक्षिप्त, जब तक मनुष्य का ज्ञान जागृत नहीं होता वैराग्य नहीं आ सकता, क्योंकि उच्च ज्ञान के बिना मनुष्य भौतिक भोग के प्रति आसक्ति को त्याग नहीं सकता। तो सार क्या है आज के इस श्लोक का? जब तक ज्ञान नहीं होगा तब भोगों से वैराग नहीं होगा, और जब तक भोगों से वैराग नहीं होगा तब भगवान से प्रेम नहीं उत्पन्न होगा, ऐसे समझना चाहिए। तो अब ये ज्ञान कहां से आएगा, ये दूसरा प्रश्न है। ददाति दिव्य ज्ञान, भगवान श्री कृष्ण गुरु के स्तर पे खड़े हुए तो अर्जुन को दिव्य ज्ञान दिया। अब जो भगवान श्री कृष्ण के प्रतिनिधि गुरुजन हैं वो दिव्य ज्ञान का उपदेश वही करते हैं, तभी ज्ञान की उत्पत्ति होती है। तो इसके सीधा सा मत ये है कि गुरु नारद की परंपरा का गुरु मिलेगा तभी ज्ञान होगा जिसमें पक्का वैराग होगा, बाकी नहीं तो पक्का वैराग नहीं होगा तो फिर वापस भोग में लिप्त हो जाएगा। और ये परंपरा हमारी नारद इस परंपरा में है, उसी परंपरा के अंतर्गत श्रील प्रभुपाद ने हमको जो भक्ति का मार्ग दिया है श्री कृष्ण का, इसमें ज्ञान और वैराग अपने आप समय आने के ऊपर प्रकट हो जाता है। हमको केवल भक्ति नेम से करनी है। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद।